Namaha samaya sahaya mukya chakashyate chisvabhavaya bhavaya sarvabhavantarachyate vandetu sauvasiddhi dhumachalamano vayam gatim patti gocchami samaya pahura vedhamshiti kevali.
अष्टानिका महापर्व का अत्यंत ही मंगलमय महोत्सव चल रहा है। नंदीश्वर द्वीप में देवों के झुंड, जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति आराधना और वीतरागी तत्व ज्ञान की उपासना में वर्त रहे हैं। अपन लोग भी उसकी भावना पाते हुए यहाँ पर समय सारगी परमागम के माध्यम से अपने स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि कल हमने चर्चा करी थी, अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए भगवान कुंद कुंद आचार्य देव ने इस महान परमागम शास्त्र की रचना की और उसमें अनादि काल में परिभ्रमण करते हुए जीव को जिस एकत्व विभक्त शुद्धात्म स्वरूप को जानना, मानना, अनुभव करना रह गया और इस कार्य के अतिरिक्त अन्य सब कार्य अनंत बार किए लेकिन भव भ्रमण का अंत नहीं आया, उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को बताने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने इस समय सार परमागम में की और पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन लोगों को 19 बार सभा में प्रवचन करके इस महान परमागम के रहस्यों का उद्घाटन हम लोगों के लिए किया और आज हम गुरुदेव श्री की वाणी के प्रभाव से इस परमागम के रहस्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। चर्चा अपने 31, 32 और 33 नंबर की गाथा पर होनी है, जो कि जिनेन्द्र परमात्मा की निश्चय स्तुति की गाथा है और उसमें हमने ये चर्चा की थी कल कि इन निश्चय स्तुति की गाथा तक आचार्य भगवान कैसे आएंगे, निश्चय स्तुति की बात इस गाथा में कैसे आई, इस शास्त्र में कैसे, कहां से, किस तरह आई, तो उस संबंध में अपन ने 19 नंबर की गाथा से प्रकरण को उठाया था और उसमें 19 नंबर की गाथा में अज्ञानी कौन है, अज्ञानी की पहचान क्या है, कब तक अज्ञानी रहेगा और उसके बाद सर्वज्ञ भगवान ने जीव का स्वरूप कैसा कहा, उद्गल जीव क्यों नहीं हो सकता, जीव उद्गल क्यों नहीं हो सकता, ये सारी बातें करने के बाद शिष्य ने एक प्रश्न उठाया था जो 31, 32 और 33 गाथा का बीजभूत प्रश्न है। वो प्रश्न उठाया था कि यदि आप ऐसा कहोगे आत्मा शरीर नहीं है या शरीर आत्मा नहीं है, यदि आप ऐसा कहोगे तो जो जिनेन्द्र परमात्मा की, आचार्य भगवंतों की जो स्तुति शरीर के माध्यम से की गई, 500 धनुष की काया, ऐसा भगवान का वर्ण, भगवान के शरीर की कांति ऐसी, दसों दिशाओं में जिनकी कांति व्याप्त है, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा से भी जिनका तेज छिपता नहीं है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से जो भगवान की स्तुति शास्त्रों में की गई है, वीतरागी संतों ने की है, पद्मनंदी आचार्य देव जैसे आचार्य, समंत भद्र देव जैसे समर्थ आचार्यों ने भी तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति की है, कहीं कहीं शरीर को माध्यम बना करके भी स्तुति की है, ऐसा भगवान का तेज वगैरह वगैरह। तो उन्होंने तो शिष्य ने प्रश्न किया कि फिर वो तो सारी स्तुतियां झूठी ठहरेगी आपके हिसाब से। तो फिर आचार्य भगवान ने ये बात कही थी कि भाई तू नए विभाग को नहीं जानता। पहले इन गाथाओं की चर्चा करते हुए अपन 31 गाथा तक पहुंचेंगे। तो जब ये बात कही शिष्य ने, तब आचार्य भगवान ने 27 नंबर की गाथा में एक बहुत मार्मिक बात कही। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। और वह नए विभाग किस प्रकार है वह गाथा के द्वारा आचार्य देव ने बताया। उस गाथा में देखो बहुत एक जो मार्मिक बात है इस गाथा में, और वो मार्मिक बात क्या है, हम लोगों का वजन किधर जाता है और ज्ञानी धर्मात्माओं का वजन किधर जाता है, ये बात समझने की है।
व्यवहारेण वो भासति जीवो देवो न भवति खलु निश्चयस्य जीवो देवो यः कदा विवेकतो।
इसमें क्या कहा,
जीवते दोनों एक वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न।
अपन इन 31 गाथा के पहले जो विषय आया है जिसके द्वारा 31 गाथा का जन्म हुआ उसका अपन केवल गाथार्थ गाथार्थ के आधार की चर्चा करेंगे। देखिए, व्यवहार नय तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है। देखिए इस शब्द का प्रयोग किया, व्यवहार नय तो यह कहता है एक बार कि जीव और शरीर एक ही, किंतु निश्चय नय से, निश्चय नय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं होते या एक पदार्थ नहीं है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि भाई ये जो तुमने प्रश्न उठाया कि शरीर आदि के माध्यम से भगवान की जो स्तुति की गई है तो वो झूठी सिद्ध होगी, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता इसलिए तू ऐसा प्रश्न करता है। तो पहले तो उन्होंने नए विभाग को हमारे सामने रखा, नए विभाग क्या है, और नए विभाग में पूरे निश्चय व्यवहार का रहस्य निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा कि व्यवहार नए कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, वो दोनों की भिन्नता को नहीं कहता, लेकिन वो कहता है, उसमें कदापि शब्द का प्रयोग नहीं किया। और जहां निश्चय की बात आई कि निश्चय से तो जीव और देह कदापि एक पदार्थ नहीं हो सकते, है ना। आचार्य देव ने निश्चय और व्यवहार का ज्ञान कराया तो उसमें निश्चय व्यवहार के बाद में उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा एक है ऐसा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन निश्चय ने की, निश्चय ने की बात करें तो निश्चय ने से तो जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते, तो वो कदापि एक नहीं हो सकते। इसमें तीनों काल की बात की है, शाश्वत सत्य की बात की है, और जीव और देह को एक व्यवहार में कहता है ये तात्कालिक, ये त्रैकालिक सत्य नहीं है। ये बात वर्तमान में जीव और शरीर के संयोग की अपेक्षा से, संयोग का ज्ञान कराने के लिए किया गया कथन है, जो तात्कालिक संयोग की अपेक्षा से तात्कालिक सत्यता है। सत्यता कितनी, तो वर्तमान में शरीर और आत्मा का संयोग है इतनी। लेकिन उससे भी वजनी बात क्या है, तो उससे भी वजनी बात यह है कि जिस समय शरीर और आत्मा का संयोग है और शरीर और आत्मा को व्यवहार में एक ही प्रतिपादित कर रहा है, उसी समय निश्चय के अभिप्राय से विचार करो तो जीव और शरीर ना तो भूतकाल में कभी एक हुए थे, ना वर्तमान में एक है और ना भविष्य के अनंत काल में। जिन जीवों को अनंत काल तक शरीर का संयोग रहना है, अपन लोगों के लिए नहीं है ये बात, क्योंकि अपन लोगों के साथ में अनंत काल तक शरीर का संयोग रहने वाला नहीं। समझ आएगा नहीं, अंदर से ऐसी हूक तो आनी चाहिए नहीं, आनी चाहिए अपने लिए नहीं है, लेकिन जितने काल तक अपने साथ शरीर का संयोग रहे उतने काल भी निश्चय लेके अभिप्राय से विचार किया जाए तो शरीर और आत्मा कभी एक पदार्थ नहीं होगा। यानी निश्चय में उस त्रैकालिक सत्य का उद्घाटन करता है और व्यवहार ने तात्कालिक परिस्थिति का ज्ञान कराता है। इसको अपन तात्कालिक सत्य नहीं कहेंगे, इसको अपन कहेंगे तात्कालिक परिस्थिति का ज्ञान कराना वो व्यवहार ने का काम है, और त्रैकालिक सत्य वस्तु स्थिति का ज्ञान कराना तो वो निश्चय ने का काम है। अभी हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि देखो ठीक है जी आत्मा और शरीर भिन्न है, निश्चय ने से भिन्न होगा। अपन लोग क्या कहते हैं, निश्चय ऐसे भिन्न होगा, व्यवहार से शरीर और आत्मा भिन्न कहाँ है, व्यवहार से तो शरीर और आत्मा एक ही है ना। हमारा पूरा वजन व्यवहार जिसने तात्कालिक परिस्थिति का ज्ञान कराया, तात्कालिक संयोग का ज्ञान कराया, हमारा वजन उस पर जाता है। और जो त्रैकालिक सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, शरीर और आत्मा वर्तमान संयोग में एक साथ दिखने पर भी एक नहीं है, एक हुए नहीं है और एक कभी होने वाले नहीं है। इस तात्काल इस त्रैकालिक सत्य पर हमारा वजन नहीं जाता। ज्ञानी क्या कहते हैं, ठीक है व्यवहार से एक कहा होगा, संयोग का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से एक कहा होगा, लेकिन निश्चय से तो एक नहीं है ना। तो ज्ञानी का वजन जाता है निश्चय पर और अज्ञानी का वजन रहता है व्यवहार। जिसका व्यवहार पर वजन रहता है वो निरंतर एक एक समय करके मिथ्यात्व का पोषण करता जा रहा है, और जिसका निश्चय पर वजन जाता है, अरे अभी निश्चय की निश्चय के विषयभूत वस्तु प्राप्त नहीं भी हुई हो कदाचित, लेकिन जिसके अंतरंग में निश्चय द्वारा प्रतिपादित त्रैकालिक सत्य वस्तु स्वभाव का पक्ष भी आया, वो जीव स्वभाव सम्मुख होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आचार्य भगवान ने शिष्य को पहले तो उन्होंने नए विभाग समझाया, और नए विभाग समझाने के बाद फिर यहाँ कहा कि जीव से जुदा। अगली नंबर की गाथा में देखो, अब यही बात गाथा में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीव से जुदा पुद्गल मई इस देह की स्तवना करी, माने मुनि जो केवली वंदन हुआ स्तवना हुई। क्या मतलब इसका, भावार्थ में लिखा कि व्यवहार नहीं तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चय नए भिन्न कहता है, इसलिए व्यवहार नए से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है। मैंने शरीर के स्तवन को आत्मा का मैंने भगवान का स्तवन वो केवल व्यवहार में से माना जाता है। मैंने व्यवहार वो भगवान की व्यवहार से स्तुति है, पारमार्थिक स्तुति नहीं है ना। वो उस बात को गाथा में उन्होंने कहा कि इस जीव से भिन्न इस पुद्गल मय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान की स्तुति की और हमने केवली भगवान की वंदना की, ऐसा मानते हैं। ये मानते माने ये व्यवहार से ऐसी मानते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने कहा अगली गाथा में, ऊपर की बात को कहते हैं कि निश्चय विषय नहीं योग्य ये नहीं देह गुण केवल ही के, जो केवल ही गुण को सवे परमार्थ केवल ही हो सवे, लेकिन यह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है। अर्थात क्या मतलब, ये वास्तव में निश्चय से ये परमात्मा की स्तुति नहीं। देखो मोक्ष महाप्रकाशन में एक बात लिखी है पंडित जी ने, एक बहुत मार्मिक, वर्तमान में संयोग रूप से इकट्ठे रह रहे, अगर ध्यान से सुनने की ये बात, अगर ये संयोग रूप से भी इकट्ठे नहीं होते तो व्यवहार में से भी शरीर को आत्मा या आत्मा को, मैंने शरीर को आत्मा का नहीं कह सकते, जीव और देह एक है, ये कथन व्यवहार में से भी नहीं हो सकता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यदि ये सर्वथा एक होते, कौन एक होते सर्वथा, जीव और शरीर यदि सर्वथा एक ही होते तो फिर इनकी एकता व्यवहार नय का विषय नहीं होती, वो निश्चय नय का विषय होता। पॉइंट समझ आएगी नहीं? क्या कहा? अगर ये सर्वथा एक होते तो फिर इनकी एकता को व्यवहार नय कहने की क्या आवश्यकता थी, और यदि इनका संयोग भी नहीं होता तो फिर व्यवहार नय से भी शरीर और आत्मा के एक पने का कथन वो व्यवहार में से भी नहीं होता यदि आत्मा और शरीर का संयोग नहीं होता। तो व्यवहार में का कार्य क्या है? कि व्यवहार में का कार्य है कि वर्तमान में जो शरीर और आत्मा के संयोग रूप एक परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति का ज्ञान कराना, और वो व्यवहार में क्या कहता है, वो गजब का पॉइंट है। ये बातें सब समझ में आएगी तो 31 गाथा का मर्म समझ में आएगा। तो वो व्यवहार में ये कहता है जो शरीर और आत्मा को एक कहता है, ध्यान से सुनना है, तो शरीर और आत्मा को एक कहने वाला व्यवहार में कौन सा व्यवहार में सद्भूत है या असद्भूत है, बोलो कौन सा व्यवहार है? असद्भूत है, ठीक है। असद्भूत, असद्भूत का मतलब क्या होता है भैया? असद्भूत का मतलब होता है कि झूठा व्यवहार। गुरुदेव बोलते हैं ना सीधा, यहाँ झूठा व्यवहार, झूठे व्यवहार से कहने को तो है, माने वो व्यवहार ये कह रहा है कि देखो भाई मैं असद्भूत हूँ, मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। क्या कह रहा है वो व्यवहार में? व्यवहार में ये कह रहा है कि मैं झूठ कहूंगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। बोलो ये बात व्यवहार में ने सही कही कि नहीं कही? मैं झूठ कहूंगा ये व्यवहार में ने सत्य कहा, क्यों? क्योंकि वो झूठ ही कहते। शरीर और आत्मा को एक कहने वाला नहीं, वो असद्भूत व्यवहार में है, और असद्भूत व्यवहार में ये प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं जो कहूंगा ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं है, मैं तो मात्र एक संयोग हुआ है। उस संयोग का ज्ञान कराने के लिए संक्षिप्त भाषा में शरीर और आत्मा को एक कहूंगा, और यदि तुम एक ही मान लोगे, मैं एक कहूंगा ये बात भी सत्य है, क्योंकि मुझे ड्यूटी मिली है कि मैं संयोग का ज्ञान कराऊं, तो मैंने अपने झूठ बोलने के धर्म को सही रूप में निभाया है। असद्भूत व्यवहार में क्या कहता है सत्येंद्र जी? असद्भूत व्यवहार में क्या कहता है कि मैंने अपने झूठ बोलने के धर्म को सही रूप में निभाया है। सुनना ध्यान से, और अब तुम क्या करना कि तुम इस मान्यता को जैसा मैं कह रहा हूं वैसा का वैसा यदि तुम मान लोगे तो फिर छेड़ाला में आ जाओ। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व बूढ़ा है, शरीर और आत्मा को एक मानने वाले नहीं का एक मानने वाले मानने का जो अभिप्राय है कि वह क्या है, तो वह बहिरात्म तत्व, बहिरात्मा और तत्व मुधा, मतलब तत्व में मूड है। तत्व में मूड का मतलब क्या हुआ, देखो कितना मूड है, जीव और शरीर मतलब एक आत्मा और अनंत प्रज्ञामय परमाणु में शरीर और दोनों को एक मानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न तो वो आत्मा के स्वरूप को जानता है और न वो पुद्गल के स्वरूप को जानता है, क्योंकि यदि वो पुद्गल के स्वरूप को जानता तो शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता, यदि वो आत्मा के स्वरूप को जानता तो भी शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता। तो हमारा जो वजन जाता है क्योंकि अनादि काल का व्यवहार का पक्ष है, और जहां व्यवहार की बात आती है वहां ये उछलता है। जब वो लिखा नहीं लिखा शास्त्र में, व्यवहार ऐसे तो एक लिखा नहीं लिखा शास्त्र में, निश्चय ऐसे नहीं होगा, निश्चय ऐसे नहीं होगा तो ठीक है व्यवहार में से तो है कि नहीं। अरे व्यवहार में से है नहीं, आचार्य भगवान ने क्या कहा, व्यवहार नय कहता है, होता तो व्यवहार में से भी नहीं है। जीव और शरीर निश्चय नैसे एक है कि व्यवहार में से एक है। अभी अगला पॉइंट लो, जीव और शरीर निश्चय नैसे एक है कि व्यवहार में से एक है, कि ना निश्चय नैसे एक है और ना व्यवहार में से एक है, सर्वथा भिन्न पदार्थ कभी भी एक होते ही नहीं। तो फिर है क्या, इस संयोग देखकर एक कहने का नाम व्यवहार में है, व्यवहार में से शरीर और आत्मा एक है, ऐसा नहीं है। एक नहीं होने पर भी एक का कथन किसी प्रयोजन विशेष से करना उसका नाम व्यवहार है। गुरुदेव श्री व्यवहार की बहुत अच्छी परिभाषा करते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं है उसे कहना इसका नाम व्यवहार। जैसे राग मोक्ष मार्ग नहीं है फिर भी उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहता है व्यवहार, तो है नहीं उसे कहना उसका नाम व्यवहार। और जब तक ये निश्चय व्यवहार की बुद्धि अपने अपने मस्तिष्क में नहीं सुलझेगी तब तक कदम कदम पर अपने को ऐसे प्रश्न उठेंगे, कभी सारी बातें झूठी। तो इतना भगवान के शरीर का रूप का वर्णन किया वो सब झूठा, सारे शास्त्र में झूठा लिखा, कि भाई झूठा नहीं लिखा, शास्त्र में संयोग का ज्ञान कर आ गया। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वह स्तवन, वह स्तवन माने कि जो शरीर और आत्मा का स्तवन, जो मोक्ष में पढ़ा सके में बात कर रहा था कि जैसे हम अपने शरीर और आत्मा रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि करते हैं और मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, तो जैसे हमने अपने शरीर और आत्मा को एक माना उसी तरह हमने भगवान के शरीर और आत्मा को भी एक माना। तो भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा उन दोनों का संबंध संयोग रूप जो पर्याय है वो उनकी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उसमें शरीर भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान अरिहंत, अरिहंत भगवान है ना, तो वो अरिहंत भगवान वो शरीर का नाम नहीं है, वो जो आत्मा में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्रकट हुआ वो अनंत चतुष्टय से प्रकट मान आत्मा वो वास्तव में अरिहंत है। और क्योंकि अरिहंत के सामने, अरिहंत के सामने अभी परमोदारिक देह का संयोग है और उस देह की अलग प्रकार की विशेषताएं तो जो जगत के जीवों के शरीर में नहीं पाए जाने वाली विशेषताएं, वे वो विशेषताएं हैं कि जो जगत के किसी जगत के प्राणी के शरीर में नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरीर में ही वो विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए उन विशेषताओं के आधार पर भक्ति करना उसे भगवान की व्यवहार स्तुति तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं आचार्य देव तो वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है। तो अगर तुम उसे भगवान केवल परमात्मा का स्वरूप मान रहे हो तो वो योग्य नहीं है, वो भगवान केवल परमात्मा की स्तुति नहीं है। क्योंकि शरीर के गुण क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है उसका उत्तर दिया, क्योंकि शरीर के गुण केवली के नहीं होते। केवली माने आत्मा और शरीर माने, शरीर माने कैसा, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रकाश से व्याप्त है, कोटि कोटि सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है भगवान के तेज के आगे वो भी फीका पड़ता है। अब बताओ आत्मा में कौन सा ऐसा गुण है जिसमें से ऐसा तेज प्रकाश निकले, ये तो शरीर की व्यवस्था है। तो शरीर के वे गुण केवली के नहीं होते। व्रज सब नाराज सैनन, तो भगवान आपका व्रज सब नाराज सैनन वाला शरीर, व्रज सब नाराज सैनन माने हड्डियों की मजबूताई, तो आत्मा को हड्डी नहीं होती तो हड्डी की मजबूताई आत्मा को कहां से होगी। अब व्रज सब नाराज सैनन से भगवान की स्तुति करें, हम अन्य अन्य प्रकार से आत्मा की भगवान की स्तुति करें शरीर के आधार से, तो कहते हैं कि वो स्तुति योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण वे केवली के नहीं होते। जो केवली के गुणों को, केवली के गुणों की स्तुति करता है। अब केवली के गुण क्या है? तो देखो पूजा में अपन बोलते हैं ना कि कहवत के 46 गुण गंभीर। पूजा में भी लिखा कि कहने को तो अरिहंत परमात्मा को 46 गुण कहते हैं, लेकिन वास्तविक गुण कितने हैं? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्य, ये तो सब पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। फिर इनको अतिशय क्यों कहा जाता है? कि ऐसे वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा जो आत्मा होने वाला हो, बाहर में उसके ही इस प्रकार के अतिशय देखे जाते हैं, इसलिए उनको भगवान के गुण कह दिए जाते हैं। लेकिन सच में भगवान के गुण क्या है? कि जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख प्रकट हुआ, जिसको अपन अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कहते हैं, तो वो अनंत ज्ञान भगवान का गुण है। अनंत ज्ञान से भगवान की स्तुति करो कि हे प्रभु, आपका केवल ज्ञान जिसमें अपने आत्मा के अनंत गुण, अनंत पर्याय, अरे असंख्यात प्रदेश, ये तो जानने में आते ही है। विश्व के सारे चराचर पदार्थ आपके केवल ज्ञान पर्याय में दिए गए थे। इस तरह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से भगवान की स्तुति करता है। वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। अब ये परमार्थ कौन सा? अब ध्यान से सुनना, ये परमार्थ कौन सा भाई साहब? कि शरीर की स्तुति को व्यवहार कहा। अब ध्यान से सुनना जरा, कि शरीर की स्तुति को जब व्यवहार कहा, तो केवली भगवान की आत्मा की स्तुति को परमार्थ कहा। सुधीर जी वो ध्यान से सुनना, क्या कहा? कि जब शरीर की स्तुति को व्यवहार कहा, तो केवली परमात्मा के गुणों की स्तुति को, माना अनंत ज्ञान से उनकी हम स्तुति करें, अनंत दर्शन से उनकी स्तुति करें, अनंत सुख से स्तुति करें, अनंत वीर्य से स्तुति करें, तो वो परमार्थ स्तुति। लेकिन भैया अब एक पॉइंट और सोचो कि केवली भगवान भी अपनी आत्मा की अपेक्षा से स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? क्या परद्रव्य? तो क्या परद्रव्य की स्तुति परमार्थ स्तुति हो सकती है? क्या कहा? चक्कर पड़ा ना? अरे वो तो केवली परमात्मा में परमार्थ और व्यवहार गठित किया ही है। ये परमार्थ जो गठित किया है ना, ये केवली भगवान के शरीर की स्तुति को जब व्यवहार कहा, ध्यान से सुनना भाई जरा, कि जब केवली परमात्मा के शरीर की स्तुति को परमार्थ कहा है, व्यवहार कहा, तो केवली परमात्मा के गुणों की स्तुति को परमार्थ, ये तो केवली केवली में परमार्थ और व्यवहार गठित किया। ये हमारे लिए, अब हम अपनी बात करें, तो हमारे लिए केवली परमात्मा की परमार्थ स्तुति क्या है? केवली की परमार्थ स्तुति क्या है? जिनेंद्र परमात्मा की परमार्थ स्तुति क्या है? तो भाई साहब, जिस तरह केवली भगवान का शरीर पर है, हमारे लिए तो केवली परमात्मा का आत्मा भी पर है। तो केवली भगवान का आत्मा भी हमारे लिए पर है, तो क्या पर आत्मा की स्तुति वो परमार्थ स्तुति हो सकती है? पॉइंट समझ आएगा नहीं है? यहाँ तो परमार्थ लिखा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर यहाँ परमार्थ लिखा, फिर आगे ये प्रश्न क्यों उठाया केवली भगवान की निश्चय स्तुति क्या है? अगर यही वास्तविक परमार्थ होता, यही केवली परमात्मा के आत्मा की स्तुति, अगर वास्तव में परमार्थ स्तुति होती तो फिर अगली गाथाओं में केवली भगवान की निश्चय स्तुति का प्रसंग करने की जरूरत है। कहने का मतलब समझ आया क्या? जो कहना चाह रहा हूं समझने का प्रयत्न करना। ये तो उन केवली परमात्मा में परमात्मा व्यवहार घटित किया, उनके शरीर को शरीर की स्तुति को व्यवहार कहेंगे, व्यवहार स्तुति कहेंगे, तो उनकी आत्मा के स्तवन को परमार्थ स्तवन कहेंगे। ये तो उनमें घटित करवा। अपनी ओर से लो तो भाई साहब, चाहे आप केवली भगवान के शरीर की स्तुति करो और चाहे आप केवली भगवान के आत्मा की स्तुति करो, अरे दोनों पर है कि नहीं? कि दोनों पर है ना। तो अब वास्तव में जो केवली परमात्मा के शरीर की स्तुति वो असत्यार्थ स्तुति है, असद्भूत व्यवहार नैसे की जाने वाली स्तुति है, और केवली भगवान के आत्मा की स्तुति जिसको यहाँ शरीर की स्तुति की अपेक्षा से तो परमार्थ कहा, लेकिन जब हम अपनी अपेक्षा से बात करेंगे तो हमारे लिए भी वो आत्मा पर आत्मा है, वो आत्मा केवली परमात्मा का आत्मा भी हमारे लिए स्व आत्मा नहीं है। अच्छा, हमें एक दूसरा पॉइंट आपके सामने और रखता हूँ कि केवली भगवान के शरीर की स्तुति में राग होगा कि नीतराग का होगा? बोलो, राग होगा पक्का? ठीक। अच्छा, केवली भगवान के आत्मा की स्तुति करें तो राग होगा कि नीतराग का होगा? राग होगा ना। तो जिसकी स्तुति करने से राग हो वो सब व्यवहार स्तुति। परमार्थ स्तुति इसका नाम है कि जिसकी जो स्तवन करने से अंतर में वीतराग का प्रकट हो वो परमार्थ स्तुति, और जो स्तवन करने से राग हो वो व्यवहार स्तुति। तो परमार्थ क्यों कहा यहाँ पे? शरीर से आत्मा की स्तुति को भिन्न बताने के लिए, शरीर की स्तुति को व्यवहार कहेंगे तो आत्मा की स्तुति को परमार्थ कहेंगे, लेकिन वो तो केवली परमात्मा के आत्मा की बात है, और केवली परमात्मा का आत्मा भी हमसे भिन्न है और केवली भगवान का शरीर भी हमसे भिन्न है। हमारे लिए तो वो दोनों व्यवहार स्तुति होंगी। क्यों? क्योंकि केवली भगवान के शरीर को लक्ष्य करके हम स्तवन करें तो भी हमें राग होता है, और केवली भगवान के आत्मा को लक्ष्य करके हम स्तुति करें तो भी वीतरागता को नहीं होगी। मतलब उनकी वीतरागता के लक्ष्य से, उनकी वीतरागता के लक्ष्य से हमें वीतरागता नहीं, उनके वीतरागता का लक्ष्य भी प्रशस्त राग का एक प्रकार है, हमारे लिए तो वो दोनों व्यवहार स्तुति हो जाएंगे। उनमें तुलना करें, उनके शरीर और आत्मा में तुलना करें तो शरीर की स्तुति परमार्थ व्यवहार स्तुति और आत्मा की स्तुति परमार्थ। आ गया? अगर ये नहीं होता ना, इसी समर की गाथा का प्रश्न नहीं होता। आगे बात सुने तो यहाँ पे कहा कि केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। केवली में परमार्थ और व्यवहार घटित किया। ध्यान से सुनना, केवली में परमार्थ और व्यवहार घटित किया। फिर से समझो, बहुत गंभीर बात है। केवली में परमार्थ और व्यवहार क्या? केवली में उनके शरीर, उनका शरीर वो व्यवहार, और उनके आत्मा या आत्मा के गुण पर्याय तो वो परमार्थ। आ गया? तो वो भगवान की जिसने वास्तव में केवल ज्ञानी की स्तुति की। अब इतना होने के बाद इसके बाद उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? कि जैसे ग्राम का वर्णन करने से नगर राजा का वर्णन नहीं हो सकता। आप ग्राम का वर्णन कर रहे हो ग्राम इतना बढ़िया, ग्राम इतना बढ़िया, देखो इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी बढ़िया लाइट, इतनी सड़कें चौड़ी, है ना, कहीं गंदगी नहीं, ऐसा वैसा बाग बगीचे, जहाँ जो चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, है ना, कभी कोरोना बीमारी में जितने बेड चाहिए उससे 10 गुने बेड ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, ये सारी व्यवस्था। ये जिस तरह उसका वर्णन करने से, ग्राम का वर्णन करने से के राजा का वर्णन नहीं हो सकता, उसी प्रकार देह गुण के स्तवन से केवली के गुण का स्तवन नहीं। लेकिन एक बात तो फिर भी है, क्या अगर गांव की व्यवस्थाएं, नगर की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है, तो भले ही नगर की व्यवस्थाएं या उनका वर्णन राजा के गुणों का वर्णन नहीं हो, लेकिन ये बात तो उससे प्रसिद्ध हो ही जाती है कि इस नगर का राजा कोई व्यवस्थित व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो भले ही शरीर की स्तुति केवली की, परमात्म से केवली की स्तुति नहीं है, लेकिन केवली भगवान का शरीर भी जो होता है ना, कि सामान्य लौकिक जीवों को जैसा शरीर प्राप्त होता है, तीर्थंकर होने वाले जीव का शरीर वैसा ही है ना, तो उनके शरीर के स्तवन से भी इस बात का पता तो लगता है कि इस शरीर में निवास करने वाला आत्मा जन सामान्य जैसा आत्मा नहीं है, कोई विशिष्ट जाति का है ना। और इसीलिए शरीर के स्तवन को व्यवहार स्तवन कहा गया है ना। ये बात होने के बाद अब देखो एक बहुत मार्मिक चर्चा अब यहाँ से शुरू होती है। ये 31वीं गाथा है कि ऊपर का उपोद्घात देखना जरा, कि इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता, लावण्यता आदि आत्मा के गुण नहीं है, है ना। से केवली भगवान का शरीर ऐसा कैसा, तथा उनका तो जो तीर्थंकर परमात्मा होते ना, उनका तो ब्लड भी सफेद है, तो सफेद ब्लड होना ये आत्मा का स्वरूप है, हड्डियां इतनी मजबूत होती है, ऐसा उनका इस सब ये आत्मा का क्या लेना देना इससे, है ना। तो जब वो आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। तो इतनी बात आचार्य देव ने कह दी। चर्चा कहां से शुरू हुई थी, तो 19वीं गाथा से, इस 31वीं गाथा के बीच 19वीं गाथा में डले, और उसके बाद जब ये उसने शिष्य ने प्रश्न किया कि तुम तो एकदम ऐसा बोल देते हो कि शरीर आत्मा का है नहीं, कर्म आत्मा के है नहीं, नो कर्म आत्मा के है नहीं, आत्मा तो सर्व प्रकार के कर्म नो कर्म से रहित है, तो फिर हम जो केवली भगवान की इनकी स्तुति कर रहे हैं, इसी जा रहे फर्ज में। अरे भक्तामृत स्तोत्र देख लो, कल्याण में जितने स्तोत्रों में सबने शरीर को माध्यम बना करके स्तुति की है, बहुत बहुत जगह। तो उसका सब उत्तर दिया, और उसका उत्तर देने के बाद ये लास्ट में कहा, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकाला, इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का, शरीर के गुणों का उनके अभाव है, इसलिए उनके माध्यम से, शरीर की माध्यम से या बाह्य वैभव किसी के माध्यम से भगवान की स्तुति करना एक केवली का स्तवन नहीं है। देखो एक बात हुआ, इन बाहर के गुणों के माध्यम से भगवान की महिमावंत करना, भगवान को महिमावंत करना, ये आचार्य समंत भद्र को भी स्वीकार नहीं, और उन्होंने देवागम स्तोत्र बनाया, और देवागम स्तोत्र में उन्होंने कहा देवागम नमो यान चामर आदि विभूतया, हे भगवान आपके देवों का आगमन होता है, आपके 64 चमट ढूंढ रहे हैं, आपका ऐसा समोसरण लगा है, आपको धर्म को यहाँ तक उन्होंने ले दिया, आप तो हो, इसलिए भी हम आपको नहीं मानते, क्यों, क्योंकि हर धर्म का प्रचारक, हर धर्म का उपदेशता, हर धर्म का प्रवर्तक, जो विश्व में जितने लोग में अज्ञानी ने धर्म चलाए, उन सबके प्रवर्तक अपने को उस धर्म का आपका साथ उस धर्म का पुण्य करने क्या अंतर है? तो फिर क्यों मानते हो? उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही, दोषों और आवरणों का हीना दिक्कत देखी जाती है नहीं, दोषों की हीनता और आवरणों की हीनता, दोषों की अधिकता और आवरणों की अधिकता, मैं अधिकता और हीनता, अधिकता से हीनता देखी जाती है ना। तो कोई पुरुष ऐसा भी होना चाहिए जिसके दोष सर्वथा नहीं हो और जिसके आवरण सर्वथा नष्ट हो गए हो। और हे प्रभु, आप एक ही समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य को जानते हो, एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य का आपने प्रतिपादन किया है और एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रतिपादकता, ये आपकी सर्वज्ञता की मिशन ऐसा बहुत बहुत लिया है। अब देखो इतना लिया, जब इतनी बात हो गई, अब शिष्य प्रश्न कहता है कि महाराज बहुत हो गया, ये स्तमन नहीं है, ये स्तमन है, परमार्थ स्तमन ऐसा है, राजा का वर्णन करने से नगर का वर्णन, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं हो सकता। यानी कितनी कितनी लंबी बातें आपने कर दी। तो प्रभु अब तो अब मैंने बहुत हमने सुन ली आपकी, अब आपको हमें ये बताओ, बहुत हमने आपकी बात हमने पूरे ध्यान से सुनी, अब आप हमें तो ये बताओ कि तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कैसे है, क्या है निश्चय स्तुति? आचार्य कहते हैं हम कहते केवली भगवान की निश्चय स्तुति क्या है? विशापार स्तोत्र के उपदेश श्री के प्रवचन, और अभी तो वर्ड टू वर्ड भी आ गई, उसका हिंदी भी हो गया, उसमें एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने कही कि देखो क्या गजब की बात, प्रश्न कर रहे हैं तीर्थंकर भगवान की निश्चय स्तुति क्या है और उत्तर दे रहे हैं आत्मा की ओर से कि भाई साहब आत्मा की स्तुति वही भगवान की निश्चय स्तुति है। अरे भगवान की स्तुति तो भगवान की व्यवहार स्तुति है, चाहे तुम उनके आत्मा की स्तुति करो चाहे उनके शरीर की स्तुति करो, वो तो व्यवहार है सब। अपने आत्मा की स्तुति हमने की तो हमने भगवान की निश्चय स्तुति की। वो यहाँ पे कह रहे हैं तो अब केवली, अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गेय गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते थे। तीन इसमें जो है ना बहुत अच्छी तीन तरह की स्तुति आएगी। पहली स्तुति आएगी गेय गायक संकर दोष, और उसके बाद अगली गाथा में 32 नंबर की गाथा में जो स्तुति आएगी वो आएगी भाव्य भावक संकर दोष को दूर करके स्तुति करती है, ठीक है। और उसके बाद 33 नंबर की गाथा में आएगी, उसमें भाव्य भावक के दोष का अभाव से निश्चय स्तुति कहते हैं। ये भाव्य भावक दोष को दूर करना और अभाव करना, दूर करना माने मिटाया नहीं, दूर किया है मतलब उपशम, और अभाव माने छह, देखो तीन प्रकार की स्तुतियां हैं। तो पहले नंबर की जो स्तुति है, स्तुति के वर्णन के क्रम में जिसका नंबर पहला है, स्तुति के वर्णन के क्रम में नंबर पहला और स्तुति है जगन्य, स्तुति के वर्णन के क्रम में वर्णन दूसरा और वो स्तुति मध्यम, स्तुति के वर्णन के क्रम में नंबर तीसरा लेकिन स्तुति है उत्कृष्ट। क्यों? क्योंकि वो तीसरे नंबर की जो स्तुति है ना, केवल ज्ञानी की स्तुति माने जो केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे, छपक श्रेणी की स्तुति है। 32 नंबर में उपशम श्रेणी की स्तुति है, जरूरी नहीं है केवल ज्ञान पाएगा वापस गिरेगा फिर जाएगा नहीं। और ये जो पहले नंबर में स्तुति का वर्णन किया ना, तो ये वो स्तुति है जिस स्तुति के प्रकट हुए बिना 32 और 33 नंबर की स्तुति प्रकट नहीं होती। आगे यानी ये चौथे स्थान में सम्यक दर्शन जब होता है तब की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो आज अपन गाथा पढ़ेंगे, और फिर इस गाथा में आचार्य देव ने क्या मर्म समेटा है, उस मर्म की चर्चा हम आगे की स्वाध्याय में कल से चालू करेंगे। अभी अपन गाथा पढ़ लेते हैं आज।
जो इंद्रिये जीता नार सहावादियं मुणदिया इंद्री जय ज्ञान स्वभाव अधिक जानी आत्मी को निश्चय विशेषि साधु जन से जितेन्द्रिय उन्हीं को
कर इंद्रिय जय है ना। अब ये देखो बहुत मार्मिक है इंद्रिय जय। अब एक इंद्रिय शब्द में से आचार्य देव तीन अर्थ निकालेंगे और वो सब बातें इसमें है बहुत गहरी गहरी, उन सब की चर्चा पर कल करेंगे। मेरा निवेदन है एक बार आप सब लोग इस गाथा को और इस गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन 19वीं बार का चाहे 15वीं बार का जो भी आपको अनुकूलता हो उस सुन करके आएंगे तो अपने को इस गाथा की चर्चा करने में विशेष आनंद आएगा, मजा आएगा। बहुत अच्छी गाथा है, गंभीर गाथा है, वो अपन कल की साधन में चर्चा करेंगे।
अविनाशी मेरा स्वरूप सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मेरा स्वरूप सजानंदी शुद्ध